परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कल्याणकारी बातें प्रश्न है, स्त्री का जन्म क्या पाप से होता है? स्त्री का जन्म पाप से नहीं होता है। पुरुष शरीर में जिनकी स्त्री में इच्छा होती है वे अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। प्रश्न, पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है तथा जिनके माता पिता नहीं है वे क्या करें? उत्तर देते हैं, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में माता पिता की सेवा सबसे उत्तम बतलाई गई है। पुत्र सैकड़ों बरस तक सेवा करके भी माता पिता का बदला नहीं चुका सकता। माता पिता आचार्य की सेवा परम धर्म है। यज्ञ दान आदि करे तो माता पिता के कल्याण के लिए करे। प्राचीन समय में माता पिता के जीवित रहते हुए पुत्र तीर्थ यात्रा नहीं करते थे। क्या जरूरत है? माता पिता हमारे घर में बैठे हैं, ये स्वयं तीर्थ है, तीर्थ को छोड़कर कैसे जाया जाए? माता पिता जंगम तीर्थ है, चल फिरते तीर्थ है। हां, माता पिता के लिए माता पिता के साथ तीर्थ में जा सकते हैं। मंदिर में जैसे भगवान की मूर्ति होती है ऐसा अपने घर में माता पिता को मूर्ति समझ करके सेवा करें। अपने पति के जो माता पिता है उनको वो मूर्ति से भी बढ़कर सेवा करें। जैसे हम मूर्ति की सेवा करते हैं लेकिन मूर्ति से कुछ चाहते नहीं है ऐसे सेवा करें। जैसे स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म है, पति सेवा से ही तीर्थ व्रत आदि सब मिल जाते हैं, ऐसे पुत्र के लिए माता पिता की सेवा है। माता पिता यदि मर जाए तो उसके बाद भगवान की भक्ति और संसार में जो दुखी आदमी है उनको साक्षात नारायण समझ करके सेवा करें। संसार के ईश आराम भोग विलास इससे वृत्तियां हटावे और भगवान का स्मरण करें। वे चुनी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी सेवा में निवेदन की जा रही है, इसको काम में लेकर देखना चाहिए। वैद्य की औषध की तरह यह बिगाड़ करने वाली नहीं है। इन बातों के पालन करने में न सर्दी लगती है न बुखार आता है, कोई कष्ट नहीं होता। पहली बात तो है बड़ों के चरणों में नित्य प्रणाम करें। इसमें तो कोई समय नहीं लगता, एक मिनट में हो जाता है और इसका लाभ जन्म अंतरों तक होता है। यह रीति जिस जगह हो जाती है वहां लड़ाई नहीं हो सकती। बड़े लोगों के भी मन में प्रसन्नता रहती है और संसार में भी कीर्ति होती है कि अरे अमुक आदमी के घर में तो सतयुग आया हुआ है। गीता की बातें तो अनेक है परंतु घर गृह के लिए एक श्लोक बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी जन इनका पूजन करें, पवित्रता रखे, सरलता रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अहिंसा रखे, ये तपस्या है। ऐसा करने से अहंकार का नाश होता है। उसमें विनय भाव आता है, आयु बढ़ती है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इतने लाभ हो जाते हैं, पर समय और धन भी खर्च नहीं होता। इसलिए आज से इस बात का निश्चय कर ले कि हमें अपने घरों में बड़ों का पूर्ण आदर करना है। जहां बड़ों का आदर होगा वहां से कलयुग का डेरा उठ जाता है। घर में पवित्रता रखें, माताएं बहनों को ग्लानी कुछ कम आती है, इसलिए इनको शुद्धता ज्यादा रखनी चाहिए। घर को और वस्त्र को साफ सुथरा रखो और अपने व्यवहार को भी साफ सुथरा रखो। माताओं बहनों में कुछ बड़ी बोल बोलने की आदत है, अहंकार के कारण से बड़े बोल बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बातचीत करें तो बड़े विनय से करें, प्रेम से करें। ध्यान रखें कि हम लोग बोलने में बहुत गड़बड़ी करते हैं, इसलिए सावधान रहें। भोजन पवित्र करें। पवित्र भोजन की पहचान क्या है कि न्याय का जो अन्न होता है वो पवित्र होता है और अपने मन को भी पवित्र करता है। दूसरे के हक को मारना सबसे बड़ा अन्याय है। दूसरे की वस्तु को ग्रहण के दाने के समान समझे, जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण में कोई अपने को कैसा मेथा ने भोजन करा वहां के भाई हाथ जोड़ा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इस समय में भोजन नहीं करना चाहिए किसी के यहां। तो दूसरे की वस्तु ग्रहण के दाने के समान है। दूसरे का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। न्यायाधीश अन्याय का पैसा खाने से ठीक ठीक न्याय नहीं कर सकता। न्याय पूर्वक थोड़ा भी पैसा होता है वो बहुत बरकत करता है। आज के जमाने में लोगों के पास पैसे बहुत आते हैं पर कब सिरक जाते हैं पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास अन्याय का पैसा आता है। अब आप ही सोचो, घर में गधा है उसे घोड़ा कैसे पैदा होगा, बबूल से आम कैसे पैदा होगा। हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं और घर में पाप को लाकर रख दिया, कैसे सुख मिलेगा। आप सब जगह गड़बड़ी करते हो, कम से कम खाने में तो शुद्धता का ध्यान रखो। संसार में आपके लिए सबसे बड़ा भोग केवल भोजन ही है। यह आपके अंदर जाता है, बाकी कोई भोग आपके अंदर नहीं जाता। इसमें भी आप सावधान नहीं है। शुद्ध आहार करने से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से भगवान की प्राप्ति होती है। थोड़ी सी गलती सुधारने में लाभ कितना होता है। पाप कभी मत करो, चाहे लाख रुपए मिलते हो, मुट्ठी भर चना खाकर रह जाओ, पर पाप मत करो। भगवान ने जिन्हें पैदा किया है वे भगवान खाने को नहीं देंगे, कैसे संभव है? हम तो मनुष्य हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, मछलियां भी जीती है, न उनके कोई व्यापार है, न कोई नौकरी है, न कोई दलाली है, कुछ नहीं है, वे भी जीते हैं। पशु डोरी से बंधा रहता है फिर भी जीता है, चरने के लिए नहीं जाता, उसके ठाण पर आकर भोजन मिल जाता है। अरे हम तो भीख भी मांग करके पेट भर सकते हैं, फिर जीने की क्या चिंता करो, पेट कैसे भरेगा? ये तुच्छ चिंता आपको खाए जा रही है। जैसे वाल्मीकि जी नारद जी को मारने लगे तो नारद जी ने कहा, अरे भाई हमको मारते क्यों, हमारी कोई चीज है तो चीज ले जाओ, तू हमको मारेगा तो तुझे पाप लगेगा और हमारी चीज ले जाकर तुम अपने घर में बरतोगे तो आराम सब लोग भोगेंगे। वाल्मीकि ने कहा कि बाबा झूठ मत बोलो, आराम सब भोगेंगे तो मेरे पाप में भी पाती होगी। नारद जी ने कहा कि पाप में पाती कब होती है, जब अगला भी पाप का समर्थन करता है। तो घर वालों से पूछ कर आ कि तुम पाप में शामिल हो जाओगे क्या? तो वाल्मीकि जी ने अपनी मां से, अपनी स्त्री से, अपने पुत्र से पूछा, किसी ने भी नहीं कहा कि हम पाप में शामिल होंगे। वाल्मीकि जी को एक मिनट में होश आ गया, नारद जी के पैरों में पड़ गए, नारद जी ने राम राम जपाया कि मेरे से तो मरा मरा होगा। वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने कहा ऐसा ही सही, वे वाल्मीकि जी महात्मा हो गए, उनको पाप समझ में आ गया इसलिए महात्मा हुए। ये पाप है, नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया। ऐसे हम लोगों के समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी काम बन जाए। एक व्यवहार में विनय रखो, नम्रता रखो। आदमी सोचता है मैं कुछ बड़ा हूं, आप कैसे बड़े हो? आप भी भगवान के अंश हो तो आपके सामने वाला भी भगवान का अंश है, आप में तो पूर्ण बराबरी है। आप अपनी मां के पेट में जन्मे, अगला भी मां के पेट से जन्म लिया, आपका शरीर मशाणों में जला जाएगा, उसका भी शरीर मशाणों में जलाया जाएगा, आप बड़े कैसे हुए? थोड़ा सा पैसा हो गया, थोड़े से लोगों में प्रतिष्ठा हो गई, आपने अपने को बड़ा मान लिया, ये दोष है। खोट कपट को मन से निकालो, विनय और सरलता का बर्ताव करो, सबके अंदर भगवान को देखो। अहिंसा, किसी की आत्मा को दुख न दो। बने वहां तक मन से, वाणी से, शरीर से सुख पहुंचाओ, पर कम से कम किसी को अपने द्वारा दुख तो पहुंचाओ ही मत। स्वयं दुख सह लो पर दूसरे को दुख मत दो। जो अपना आराम छोड़ देता है, सबकी सेवा करता है, वो दूसरे को सुख पहुंचाने वाला परमात्मा को ही सुख पहुंचाता है। इसका रहस्य अपने लोगों के समझ में आता नहीं है। अपने देखते हैं वो आदमी कर्मों से दुख पाता है, हम क्या करें। अरे उसका कर्म देखने का काम तो भगवान का है, हमारा काम तो सुख पहुंचाने का है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, महीने में एक बार नहीं बहुत हो तो दो बार, सावधान न हो दूसरी स्त्री की तरफ तो देखे ही नहीं, दिख जाए तो भगवान का स्मरण करो, पश्चाताप करो, नमस्कार करो, याद रखो पौधा पैदा होते ही उखाड़ देना चाहिए, बड़ा होने पर नहीं उखड़ता। पाप को और शत्रु को पैदा होते ही मार डालो। शत्रु कौन है? आपके अंदर बैठा हुआ काम और क्रोध है, ये शत्रु है। जो ही मन में भाव पैदा हो त्यों कुचल डालो। चलते फिरते यदि किसी स्त्री पर दोष दृष्टि हो गई तो सूर्य भगवान के दर्शन करो, उससे नेत्रों का दोष मिटता है। भगवान का स्मरण करो, हृदय का दोष मिटता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण करने वाला अंदर से बाहर से शुद्ध हो जाता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। स्त्री पर पुरुष के प्रति और पुरुष पर स्त्री के प्रति मन से भी बुरी दृष्टि से पाप दृष्टि से न देखे। भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी बुरी दृष्टि हो जाए, पाप बुद्धि हो जाए, तो हे भगवान आप उसी समय मुझे भस्म कर देना। और यदि आपकी कहीं दृष्टि चली गई और भगवान ने आपको मार दिया तो उसमें आपका कल्याण है। दूसरी स्त्रियों को मां बहन के समान समझना चाहिए। तीन नरक के दरवाजे बताए, काम क्रोध और लोभ, ये आत्मा का विनाश करने वाले, अधोगति में ले जाने वाले हैं। नरक के दरवाजे समझकर घबराओ और छूट जाए तो समझो कि हम नरक से मुक्त हो गए। बोलने में सावधान रखो, क्योंकि संसार के सारे संबंध वाणी पर निर्भर है। बोलने में लोग बहुत गलत बोलते हैं, संयम नहीं रखते हैं, तोल करके नहीं बोलते हैं। इस कारण से लोग साधन भजन करते हुए भी शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। गीता ने कहा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं चयत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम् तप उच्यते। जो उद्वेग करने वाला वाक्य न हो, प्रिय बोला जाए, हित बोला, हितकारक बोला जाए, तथा वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमात्मा के नाम का जो अभ्यास है उसका प्रयोग किया जाए, ये वाणी का तप होता है। सत्य बोलने वाला किसी को वरदान दे दे तो सत्य होता है, श्राप दे दे तो वो भी सत्य होता है। ये वाणी के तप से होता है। घर गृहस्थ में रहते हैं तो वाणी को ताक में रख दिए, चाहे जैसा बोलते हैं। माताएं बहनें उलाहना की बातें ज्यादा बोलती हैं, कब की बात मन में रखकर कब सुनाने में पता नहीं है, कलह मच जाता है। इसलिए उद्वेग वाली बात सह लो पर कहो मत। सच्ची बात बोलो पर प्यार से बोलो। प्यारे लगने वाले असत्य भी मत बोलो और अप्रिय लगने वाले सत्य भी मत बोलो। दुविधा में हो जाए तो चुप रह सकते हो, परंतु प्यारे लगने वाले असत्य वचन नहीं बोलो और अप्रिय लगने वाले सत्य वचन भी मत बोलो। ऐसे शब्द बोलो जिससे उपकार हो। धार्मिक पुस्तकें पढ़े, भगवान का नाम लेवे, कीर्तन करें, सत्संग करें, इससे वाणी का तप बढ़ता है और जो वाणी के पहले के दोष थे वो नष्ट होते हैं और उसकी वाणी में दिव्यता आती है। इसीलिए पहले के जो महात्मा लोग होते थे वे आशीर्वाद देते थे, फलीभूत होता था। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। राजा जनक ने 1000 गाय लाकर रखी और कहा कि भाई जो ब्रह्म ज्ञानी हो वह इन गायों को ले जाए। ध्यान से सुनना हो, 1000 गाय ला करके खड़ी कर दी, भाई आप में से जो ब्रह्म ज्ञानी है वो गाय ले जाओ। कोई नहीं आया। तब याज्ञवल्क जी अपने शिष्यों द्वारा वहां पहुंच करके वे गायें हांकने लगे। याज्ञवल्क जी जो अभी रामायण सुना रहे हैं, याज्ञवल्क जी से लोगों ने पूछा कि हे याज्ञवल्क जी, क्या आप ब्रह्मवेत्ता हो? तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मवेत्ता को नमस्कार करता हूं। नमस्कार करना अलग बात है, ब्रह्मवेत्ता होना अलग बात है। आप ब्रह्मवेत्ता हो तो गाय ले जाओ, ब्रह्मवेत्ता नहीं हो तो मत ले जाओ। याज्ञवल्क जी ने फिर नम्रता से कहा, मैं ब्रह्मवेत्ता को हृदय से नमस्कार करता हूं। अभी आपका उत्तर नहीं आया। याज्ञवल्क जी ने कहा, मुझे गायों की आवश्यकता है इसलिए ले जा रहा हूं। तो शाकल्य ऋषि ने कहा कि भाई हमारे प्रश्न का उत्तर दो। याज्ञवल्क जी ने कहा, बोलो आपके क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न तो ये, क्या आप ब्रह्मवेत्ता हो? याज्ञवल्क जी ने कहा कि ब्रह्मवेत्ता कौन नहीं है। चुप हो गए। शाकल्य जी ने कई प्रश्न किए, उत्तर मिलता गया। अंत में प्रश्न किया कि परमात्मा किस में रहता है? याज्ञवल्क जी ने कहा, ओ शाकल्य जी, अब आप अति प्रश्न करते हो। अति प्रश्न माने प्रश्न की सीमा के बाहर। अति प्रश्न मत करो। जिज्ञासु के भाव से प्रश्न करो, किसी की परीक्षा लेकर अनसंत पूछना अच्छा नहीं है। यदि अब तुम अति प्रश्न करोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। साकल्य जी ने परवाह नहीं की। साकल्य जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी, मैं आपसे पूछता हूं, परमात्मा किस में है? जो ही वाक्य पूरा हुआ त्यों ही साकल्य का सिर फट गया। अब कौन बोले? जनक जी को बड़ा विचार आया कि अरे, गाय देने के लिए शर्त लगाई मैंने कि ब्रह्म वेत्ता हो वो ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मवेत्ता कौन है इसका पहचान तो मुझे मानने से होगा। कोई ब्रह्मवेत्ता कहेगा थोड़ी कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं। याज्ञवल्क्य जी से पूछा जनक जी ने कि महाराज, मैं आपके इस उत्तर को समझ नहीं पाया कि आपने कहा कि सभी ब्रह्मवेत्ता हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि देखो जनक जी, सब ब्रह्म के विषय में अनजान नहीं है, जानते हैं। उसको केवल पहचानने की जरूरत है। जानना जानते तो है ही, पहचान नहीं कर पाए। जैसे हम प्रकाश में चलते हैं, प्रकाश में सब काम करते हैं, परंतु प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं जाता, ऐसी बात है। जनक जी ने उनको गुरु बना लिया। तो याज्ञवल्क्य जी की सत्यवादी होने का ये प्रमाण है। मन के पांच तप होते हैं। एक तो हरदम मन में प्रसन्न रहना चाहिए। अपने मन को डावाडोल मत होने दो। कभी राजी होना, कभी नाराज होना, कभी हंसी ठठोरी करना, कभी रोना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सौम्य भाव होना चाहिए। एक भगवान के चिंतन करने का स्वभाव पड़ जाना चाहिए। जहां कहीं भगवान की कोई बात मिले उसमें तल्लीन होना चाहिए। एक अपने मन को रोकना चाहिए गलत जगह से, और अपने अंतःकरण के भावों को पवित्र बनाना चाहिए। ये सब मन के तप है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। जब अंतःकरण में प्रसन्नता होती है तो सब दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्नता से बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है। वो ये समझता है कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है, सब पर दया है, सब पर भगवान का हाथ है। भगवान के स्वरूप नाम गुण आदि को याद करके प्रसन्न होए। सौम्य भाव माने मन का ठंडापन। किसी को यह कहने का अवसर न दे कि आपका स्वभाव बड़ा गर्म है। आजकल लोग अपने स्वभाव की गर्मी ज्यादा बताते हैं। तुम जानते नहीं, मुझे बहुत क्रोध आता है। जब मुझे क्रोध आता है तो मैं कुछ भी नहीं देखता हूं, मेरा स्वभाव बड़ा गर्म है। अरे, गर्म स्वभाव कोई अच्छा थोड़ा ही है, पर वो उसी में ही बड़ा मानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का हर समय ध्यान करो, उठते बैठते ध्यान करो। बहुत अच्छी बात बता रहे हो, अब ध्यान से सुनना। मन को वश में करे और संसार से इंद्रियों को हटाए रखे। कैसे करे, उसका प्रकार क्या है, कि जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग है वो आपके ढील देने से दूर जाती है और आपके खींचने से आपके पास रहती है। ऐसे मन को पतंग के समान अपने हाथ में रखो। जितनी मन की वृत्तियां हैं वे संसार में उड़ान भरती, उसको खींचते रहो। बहुत ऊंची गई हुई पतंग है और उसकी डोरी आपके हाथ में है तो आप उसको पतंग को खींच लेते हो। ऐसे अपने मन को खींच लेना चाहिए। जैसे हम लोगों ने मांस का त्याग कर रखा है ऐसे भोगों का त्याग करो। वृत्तियों को संसार से हटाकर भगवान में लगाओ। अपने भाव उत्तम बनाओ। बुरे भाव है ये मन का मैल है, इस मैल को बाहर निकालो। नियत अच्छी रखो। अरे कहीं गंदगी पड़ी है वहां हम ही नहीं जा सकते, फिर हमारे हृदय में गंदगी देखकर भगवान कैसे आएंगे? भगवान हमारे हृदय में आएंगे ऐसा समझ करके हृदय को स्वच्छ रखो। भगवान की प्राप्ति हो जाने पर अपना और सबका कल्याण है ऐसा विचार करो। छोटे बच्चे हैं, माता पिता उन्हें अपने घर में पढ़ाएं। माँ जो बच्चे को पढ़ाती है वो बच्चे को ज्यादा समझ में आता है। बच्चों को चाहिए कि वे विद्या का अभ्यास करें और माता पिता को चाहिए कि वे प्रहलाद और ध्रुव के समान अपने बच्चों में भक्ति के संस्कार डालें। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को भगवान के साथ जाने की आज्ञा दी तो कितनी बढ़िया बात कही कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मदालसा बहुत अच्छी भगवत प्राप्त स्त्री थी। वह लोरी में भी ज्ञान देती थी। शुद्धो सि बुद्धो सि निरंजनो सि संसार माया परिवर्जितो सि संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। मदालसा अपने पुत्र को बोलती थी कि अरे बेटा तू तो बड़ा शुद्ध है, तू बड़ा ज्ञान स्वरूप है, तू विकार रहित है, संसार की माया से रहित है, संसार तो एक स्वप्न है, इसलिए मोह निद्रा को छोड़ करके और इस स्वप्न को छोड़ करके सदा के लिए सावधान हो जाओ। ऐसी ऐसी शिक्षा देती थी। अपने पुत्रों को महात्मा बना दिया। पति ने कहा कि देखो तुम सब पुत्रों को महात्मा बना दोगी तो यहां राज्य कौन करेगा? तो उसने एक पुत्र को राज्य दिया और अपने पति को भी वन में ले गई ताकि ये भी अपना कल्याण करे। पति का उद्धार करना था। मदालसा मर्यादा की दृष्टि से स्वयं तो अपने पति को ज्ञान दे नहीं सकती थी तो महात्माओं के पास ले गई, महात्माओं से ज्ञान दिलाया। और अपना जो एक बेटा जिसको राज्य दिया था उसको कहा कि बेटा ये एक तुमको जंतर मंत्र दे रही हूं, एक जंतर दे रही हूं, उसके हाथ में बांध लेना, ये चोत है चोत। जब तेरे पर भयंकर विपत्ति आए ना तब इसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ लेना। वो बेटा था अलर्क, अलर्क नाम का लड़का। तो मां चली गई वन में, बेटा राजा हो गया। वन में जाने पर अपने बड़े ही बड़े बेटे से कहा कि बेटा तेरा छोटा भाई है, तेरे पिता के कहने से हमने उसको राज्य में रख दिया है, अब उसे निकाल कर ले आओ ना, आखिर कब तक वो राज्य करता रहेगा, उसको भी तो भजन करना होगा। कि मां अभी जाता हूं। वो गया अपने भाई से कहा, छोटे भाई से, कि भाई तुमको राज्य करते हुए बहुत वर्ष हो गए, तुम्हारे बेटा हो गए, बेटा राजकाज संभालने योग्य हो गए, अब रवाना हो जाओ, चलो मां के पास चलो, पिताजी के पास चलो। प्रभु काहे की सुनता भाई, इतने लंबे समय तक राज्य का सुख भोगते भोगते राज्य का वियोग करने का उसके मन में भाव ही नहीं आया। बड़े भाई ने देखा कि अब तो ये फंस गया, बड़ा मुश्किल है, संसार के भोग तो जब तक नहीं मिलते नहीं भोगते तब तक ठीक है, और जब इसके रस में डूब जाता है तो डूब ही जाता है, क्या उपाय करें। तब छोटे भाई को डांटा, क्या करते हो, हम तुमसे बड़े हैं, ये राज्य मेरा है, भागो यहां से, निकलो, ये राज्य मैं लूंगा। अलर्क ने देखा कि बात तो सही है, बड़ा तो है, पर उसके मन में तो राज्य का रस बैठा हुआ था। वो अलर्क अपने नाना जी के पास गया, नाना जी भी उसके एक बड़े भारी राजा थे। नाना जी से कहा, नाना जी मेरे बड़े भाई हैं, वो कहते हैं राज्य तो मैं लूंगा, उन्होंने मुझे भगा दिया मारपीट के, मैं तो राज्य करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए। नाना जी ने कहा, चलो मानते तो नहीं तो मैं सेना लेकर चलता हूं, जब वो भगवान के भजन में निकल गया फिर यहां क्या मांगता है। वो सेना लेकर के चला गया, लड़ाई हुई, बड़े भाई ने कहा आप मेरे भी तो नाना हो, इसके भी नाना हो, दोनों के नाना हो, मेरे को मारने के लिए आए। नाना जी ने कहा गलती हो गई। नाना जी को अलग से ले जाकर कान में कहा कि नाना जी मुझे राज्य थोड़ा ही करना है, मुझे तो इसे भगवान के भजन में लगाना है, और नाना जी आप भी चलो, आपके भी तो लड़के बड़े हो गए, भगवान के भजन करने के लिए आ गए थे, आपने हमने सबने गर्भ अवस्था में भगवान से क्या कॉल किया था उस अवस्था को याद करना चाहिए। नाना जी ने कहा कि बेटा तुमने तो बहुत अच्छी बात कही। नाना जी ने जाकर अलर्क को समझाया, मानव जीवन को खराब करते हो, इतने वर्ष राज्य करते हुए हो गए, अभी राज्य से तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम्हारा बड़ा भाई कहता है उसको राज्य सौंप और चले जाओ। अलर्क घबरा गया, उसने कहा कि मुझे मेरी मां ने कहा था कि जब कोई भयंकर कष्ट आवे तब तुम ये चोथ पढ़ लेना, इससे बढ़कर मेरे क्या संकट होगा, मेरे हाथ से राज्य जा रहा है, बड़ा भाई नाराज है, नाना जी मेरे पक्ष में आए थे वो नाना जी भी मेरे से अलग हो गए, इससे बड़ा और मेरा क्या संकट होगा। उन्होंने अपनी चोत खोली, वो जंत्र खोला, उसमें कागज था, उस कागज में ये लिखा हुआ था कि जिस समय तुम्हें अपार दुख हो और जिस वस्तु से दुख हो बस उसको तत्काल त्याग देना और वन में मेरे पास आ जाना, ये लिखा हुआ था कि मुझे तो राज्य से ही दुख हुआ है। उसी समय वो वहां से रवाना होकर अपनी मां के पास आ गया। मां ने कहा बेटा क्या हुआ, कि मां आपका ये पत्र काम आ गया, मां खुश हो गई। थोड़ी देर में बड़ा बेटा भी आ गया और थोड़ी देर में उनके पिताजी भी आ गए मंदालसा के, नाना जी माने इन बच्चों के नाना जी। उन्होंने कहा कि आप कैसे आए पिताजी? तो कहा कि देखो बहन, देखो बेटी, तुम अपने पति को यहां लाए भजन करने के लिए, अपने पुत्रों को लाए, हमको कैसे भूल गए? हमको ये राज्य अच्छा नहीं लगा। तो एक मंदालसा ने अपने ननिहाल तक परिवर्तन कर दिया, बच्चों के ननिहाल तक परिवर्तन कर दिया। ऐसा अपना सुंदर स्वभाव होना चाहिए, बालकों को अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, पुत्रों को माता पिता की सेवा करने की पाठ प्रारंभ से ही समझानी चाहिए। बच्चे लोग आपस में लड़ते हो तो उनकी लड़ाई को बहुत प्रेम से समझा करके सुलटाना चाहिए, उनका लड़ाकू स्वभाव न बन जाए ऐसा ध्यान देना चाहिए। बच्चों के नाम है वो भगवान के नाम के साथ मिलने चाहिए, बच्चों को भगवान कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। सभी को ध्यान रखना चाहिए कि मान बढ़ाई है ये बहुत खतरे की चीज है, सेवा करके शरीर को मिट्टी में मिला देना चाहिए। कभी किसी को जताना नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हारा उस समय में ऐसे ऐसे तुम्हारा साथ दिया था, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति खूब प्रेम से करना चाहिए और उस भक्ति के विषय में भी किसी को नहीं कहना चाहिए कि हम इतनी माला फेरते हैं, हम इतना करते हैं, बताना नहीं चाहिए। भगवान का नाम जप करने से और शरीर से सेवा करने से और मन से भगवान का ध्यान करने से जो जीवन हमारा बीतता है वही जीवन धन्य होता है। राम।